नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पर आया है। इसका अर्थ ये है कि भारत में प्रेस फ्रीडम का स्तर बहुत से देशों के मुकाबले काफ़ी नीचे है। इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत में स्थित दो वरिष्ठ पत्रकारों से। प्रोफेसर KG सुरेश, SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी, धन्यवाद।
तो प्रोफेसर सुरेश, आपने मीडिया इंडस्ट्री में कब से और किन क्षेत्रों में काम किया है अभी तक?
देखिए, मैं हार्डकोर फील्ड जर्नलिस्ट रहा हूँ। मैंने पूरे दुनिया को कवर किया और उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ रुख किया। मैंने एशियानेट टेलीविजन, जी न्यूज और बाद में मैं दूरदर्शन का सीनियर कंसल्टिंग एडिटर बना और मैं बाद में IIMC का डायरेक्टर जनरल बना, जिसके दौरान मैंने IIMC को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाया। और पिछले लगभग 4 साल से मैं एशिया का पहले और देश का, भारतवर्ष का सबसे बड़े मीडिया यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में बतौर वाइस चांसलर, कुलपति मैं काम कर रहा हूँ।
प्रोफेसर सुरेश, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके अनुसार प्रेस फ्रीडम का सही अर्थ क्या है और इसके मायने क्या होने चाहिए?
देखिए, प्रेस फ्रीडम, मैं हमेशा एक शब्द का प्रयोग करता हूँ कि स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वच्छंदता नहीं। फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस। हमारे भारतीय संविधान में भी जो आर्टिकल 19(1) है, जिसके अंतर्गत हर भारतीय नागरिक को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिली है, उसमें कुछ सब्जेक्ट टू लिखा है, यानी कि वो अनकंडीशनल फ्रीडम नहीं है। उस फ्रीडम में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हम पर जो है हमें दी गई है, जिसके तहत हम जो है ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश हित में नहीं है, जो भारत के सुरक्षा के साथ समझौता करेगा, जो समाज में विद्वेष पैदा करेगा, आपस में समुदायों में नफरत पैदा करेगा। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस के साथ है भारत के संविधान ने भी जो हमको राइट दिया है। अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां फ्री प्रेस एक क्लॉज है, हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है। वी डिराइव अवर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम आर्टिकल 19(1), विच इज एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उसी के अंतर्गत जो है हम लोग काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत में, क्योंकि देखिए, सबसे प्रतिष्ठित जो जर्नलिज्म ऑफ करेज जिसे कहते हैं, जो अवार्ड्स है, गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में, मीडिया में, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है रामनाथ गोयनका अवार्ड। और मैं पिछले 3 वर्षों से मैं इस अवार्ड का ज्यूरी का मेंबर हूँ
जी।
और एज ए ज्यूरी मेंबर मैंने जो एंट्रीज देखी हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि जर्नलिज्म इज अलाइव एंड किकिंग इन इंडिया। लेकिन उन चीजों को अनदेखा करके एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जो है हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। आप सोशल मीडिया देखिए, आज भी कितने लोग जो है सरकार की आलोचना करते हैं, कितने लोग जो है नीतियों की आलोचना करते हैं, जो तत्कालीन सरकार है उसके साथ जो है सहमति नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई जो आपातकाल की स्थिति थी 1975 से लेकर 77 तक, उस वक्त जो मीडिया पर जो अत्याचार हुआ उसके तुलना में तो मुझे तो कम से कम ऐसे कोई घटना नहीं जहां पत्रकारों को पकड़ के सभी बड़े बड़े संपादकों को जेल में डाला जा रहा है। मुझे कम से कम याद नहीं है जहां किसी संपादक को पिछले 8 साल में या 10 साल में किसी बड़े संपादक को जेल में डाला गया हो, या किसी पर अखबार को जो है छपने से बंद कर दिया हो, या किसी को जो है किसी चैनल को जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया हो। देखिए, हमें एक चीज को याद रखना है, आज के कॉर्पोरेट जमाने में मीडिया भी एक बिजनेस है। और बिजनेस में अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर सरकार तो अपनी कार्रवाई पहले नहीं होता था। प्रेस फ्रीडम के नाम पर यह जरूर फर्क आया है कि प्रेस फ्रीडम के नाम पर पहले सब अपनी बिजनेस में मनमानी करते थे, लेकिन पहली बार जो है आपका आय के स्रोत पर, आप यानी कि इनकम के सोर्सेस पर आप किस तरीके से फंड्स को ला रहे हैं, इस पर तो एनजीओस पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है और मीडिया पर भी, कोई एंटिटी को देखकर नहीं किया जा रहा है कि जो वायलेट करता है उस पर कार्रवाई होता है उसको अगर हम, सो लेट अस नॉट रिमेम्बर, तो आप एनडीटीवी पर पहले हुआ हो या बीबीसी पर हुआ हो, तो वो उनके प्रेस के रिपोर्टिंग की वजह से नहीं हुआ, उनका जो कानूनी प्रावधान है आर्थिक विषयों को लेकर उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई की गई थी।
जी प्रोफेसर सुरेश, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वेस्टर्न मीडिया भारत की स्थिति को लेकर एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
नहीं, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पहले भी भारत को एक कॉलोनियल इमेज के साथ दिखाया जाता था, बहुत ही पिछड़ा, बहुत गरीबी, यहाँ का गुर्बत, यहाँ का जिसे कहते हैं कि इलिटरेसी, बहुत सारे वहाँ के कुछ अंधविश्वास, इन सब चीजों को जरूरत से ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि एक पश्चिमी नैरेटिव में अगर आज एक उभरता हुआ भारत है तो जाहिर है कि बहुत असुरक्षा की भावना है। भारत की जो प्रगति हो रही है, कोई भी इधर आता है, G20 को उसने लीड किया, आज वैश्विक आर्थिक स्थिति में जो है कई पश्चिमी मुल्कों से बेहतर उसका परफॉर्मेंस है, तो जाहिर है कि जो है भारत का जो है एक वर्चस्व बन रहा है। लेकिन ये सब शायद बदहजमी हो रही है, उनको हिंदुस्तान को उसी तरीके से दिखाना है, वही ना, हम नहीं कह रहे हैं कि गरीबी नहीं है, यहाँ है, बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि उनका उसी से ही खबर बिकती है,
जी
उनका अखबार को बेचने का उनका यही तरीका है भारत को एक पिछड़ा मुल्क दिखाना, क्योंकि भारत एक तरक्की पसंद मुल्क है, उस तरीके से दिखाने से उनको बिक्री नहीं होगी। तो ये वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव हमेशा ही भारत के प्रति बायस रहा है और ये बड़े अफसोस की बात है।
क्या आज भारत में इंडिपेंडेंट मीडिया काम कर रहा है या नहीं?
नहीं, बिल्कुल 100%, मैंने तो आलोचनाएं देखी है, आज भी अगर आप देखेंगे तो खुल के जो है सत्ता पक्ष का जो है आलोचना होती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि कोई घटना नहीं हो रहा है, कुछ एकाध जो 142 करोड़ के मुल्क में जो है कुछ जरूर हो सकता है कि कोई अपवाद हो, लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया है वो बखूबी अपनी भूमिका निभा रहा है।
दिल्ली में स्थित मनीषा पांडे न्यूज़ लॉन्ड्री नामक एक ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट में काम करती हैं। वे बताती हैं,
बहुत ही डाइवर्स लैंडस्केप है मीडिया का इंडिया में. बहुत सारी लैंग्वेजेस में प्रेस है, टीवी है, न्यूज़ है, और अब डिजिटल संस्थाएं भी बहुत आ गई हैं. तो कोई भी जनरलाइजेशन करना मुश्किल है, लेकिन हम एक चीज मान सकते हैं कि दिल्ली में स्थित जितनी भी संस्थाएं हैं, और स्पेशली जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन संस्थाओं में अब बीजेपी या मोदी जी से सवाल पूछना या उनको इन्वेस्टिगेशन करना, ये इसकी बहुत कम जगह हो गई है. तो न्यूज़पेपर्स तो अभी फिर भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टीवी मीडिया की बात करें, जो सबसे लाउडेस्ट मीडियम है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, हम जानते हैं कि भारत में न्यूज कंजम्पशन सबसे ज्यादा टेलीविजन न्यूज चैनल्स के द्वारा होती है, और ये चैनल्स जो हैं, खास करके हिंदी और इंग्लिश जो दिल्ली में स्थित हैं, ये एक सरकार के भोपू का काम करती हैं. सरकार से कोई सवाल नहीं पूछती हैं. हालात ऐसे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं 10 साल से, उन्होंने आज तक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, और इस पे कोई सवाल नहीं होता. ये अब एक नॉर्मल एक्सेप्टेड चीज है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देंगे. तो मेरे ख्याल से ये ऐसे इकोसिस्टम में, जहाँ की बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है कि आप सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल सही नहीं है, वहां पे डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस मेरे ख्याल से काफी काम कर रही हैं. आप हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टोरी देख लीजिए,
जी
आई थी, तो उसमें
जी
डिजिटल मीडिया संस्थानों ने बहुत काम किया, हालांकि वो स्टोरी बहुत कम चलाई गई टीवी न्यूज चैनल्स में. तो अगर मैं एक पत्रकार के तौर पे बात करूं जो एक डिजिटल मीडिया संस्था में काम करती है, तो एक तो बहुत ही कम लोग हैं जो चैलेंज करना चाहते हैं सरकार को, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं पत्रकारों के लिए मेन स्ट्रीम में, अगर वो सरकार के नैरेटिव को चैलेंज करना चाहते हो. आप देखेंगे कि काफी पत्रकार अब यूट्यूबर्स बन गए हैं, टीवी
जी
से यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां ज्यादा इंडिपेंडेंस है, बजाय कि आप टीवी चैनल में काम करें.
जी
दूसरी चीज मेरे ख्याल से एक है कि हमने देखा है कि बहुत से केसेस फाइल हो रहे हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ और मीडिया संस्थानों के खिलाफ। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि कोई रिपोर्ट आती है और उसके बाद ही एक गवर्नमेंट एक्शन देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा केस था दैनिक भास्कर का, जो कि कोविड के टाइम उन्होंने बहुत अच्छी पत्रकारिता की। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार फेल हो रही है, कैसे लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, कैसे मौतें हो रही हैं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है कि कितने लोग मर रहे हैं। और इस रिपोर्टिंग के कुछ महीने बाद दैनिक भास्कर पर रेड होती है। तो ये रेड रात जो है, जो हमने बीबीसी के साथ भी देखा, सर्वे हुआ, आप कहेंगे उनको सर्वे, लेकिन जो एजेंसियों का इस्तेमाल है, इसको लेके मेरे ख्याल से काफी चिंता है पत्रकारों में। तो ये मेरे ख्याल से काफी एक चिंता का माहौल है जर्नलिस्ट के लिए कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो एक तो क्या आपकी नौकरी बनी रहेगी और आप कहाँ कहाँ एम्प्लॉयबल हैं, और दूसरा कि सरकार का एक्शन क्या हो सकता है आपकी संस्था के खिलाफ।
मनीषा, आपने कभी पर्सनली इस प्रकार की इंटिमिडेशन या हरासमेंट अपने काम के दौरान कभी महसूस की है, कभी एक्सपीरियंस की है?
सो न्यूज लॉन्ड्री के भी अभी केस हैं कुछ, और कुछ हमारे पास नोटिसेस आए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। हमारे यहाँ
जी
सर्वे भी हुआ था जिसमें हमारे डिवाइसेस, हमारे जो सीईओ हैं उनका मोबाइल फोन ये जब्त हुआ था, मतलब मोबाइल फोन से जो इन्फॉर्मेशन है वो, तो डिवाइसेस भी देखे गए थे। तो हमारे न्यूज लॉन्ड्री में सर्वे हुआ है और वो चल रहा है, और हम लोग जो भी प्रक्रिया है कानूनी उसका साथ दे रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन भी करा था 2023 में, जिसमें हमने दिखाया था कि 40 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं पिछले 5 साल में मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, जहाँ पे सेंट्रल एजेंसियों का यूज किया गया है। तो 40 से ज्यादा संस्थानें हैं जिनको या तो आईटी नोटिस गया है, या जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा हो, या किसी ना किसी सरकारी संस्था का उनके साथ कोई ना कुछ केस चल रहा हो।
भारत में प्रेस फ्रीडम की बात करें तो मनीषा, ये बताइए, ये कहना कितना सही होगा कि भारत में इंडिपेंडेंट मीडिया अब लगभग ख़त्म हो गया है?
अब मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि इंडिपेंडेंट मीडिया खत्म हो गया, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट मीडिया का ही पार्ट हूँ, और मुझे नहीं लगता
जी
कि हम खत्म हो रहे हैं, और मुझे नहीं
जी
लगता हम खत्म होने वाले हैं। ये जरूरी है ध्यान रखना कि कठिनाइयां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, और आसान नहीं है कि आप पत्रकारिता करें, सवाल पूछे सरकार से। आपसे यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप ऑपोजिशन से सवाल पूछते रहें,